ततो जयं मुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज हमारे स्कंद 3 अध्याय 21 और श्लोक संख्या 54 जिसमें 52 और 53 में तात्पर्य नहीं दिया गया है, तो इसी सारी श्रृंखला में पढ़ूंगा। 52-53 और फिर 54 हम साथ में पढ़ सकते हैं। न यथा रथम आस्थाय चैत्रम मणिगण अर्पितम विस्फुरजत चंडको दंड रथेन त्रासन अघान स्वसैन्य चरण शून्यम वैपायन मंडलम भुवा विकर्षनाब्रीहितं सेनां परितसि अंशुमान इवह। 54 साथ में पढ़ेंगे हम लोग। तद एव से तव सर्वे वर्ण आश्रम निबंधना भगवत रचिता राजन देवन बत दासु भी तदा एव से तव सर्वे वर्ण आश्रम निबंधना भगवत रचिता राजन देवन बत दासु भी तदा एव से तव सर्वे वर्णाश्रम निबंधना भगवत रचिता राजन दुरेण बत दासु भी अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की, जिसका अनुवाद हम साथ में पढ़ सकते हैं। यदि आप अपने विजयी रत्न जटित रथ पर जिसकी उपस्थिति मात्र से अपराधी भयभीत उठते हैं सवार ना हो, यदि आप अपने धनुष की प्रचंड टंकार ना करें और यदि आप तेजवान सूर्य की भांति संसार भर में एक विशाल सेना लेकर विचरण ना करें जिसके पदाघात से पृथ्वी मंडल हिलने लगती है, तो स्वयं भगवान द्वारा बनाई गई समस्त वर्णों तथा आश्रम की व्यवस्था चोरों तथा डाकों द्वारा छिन्न भिन्न हो जाए। तात्पर्य, उत्तरदायी राजा का धर्म है कि वे मानव समाज की सामाजिक तथा आध्यात्मिक व्यवस्थाओं की रक्षा करें। आध्यात्मिक व्यवस्था चार आश्रमों में बटी है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, जबकि सामाजिक व्यवस्था कर्म तथा गुण के अनुसार ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों से निर्मित है। भगवद गीता में कर्म तथा गुण के अनुसार इस सामाजिक व्यवस्था का वर्णन हुआ है। दुर्भाग्यवश उत्तरदायी राजाओं द्वारा समुचित संरक्षण न दिए जाने के कारण सामाजिक तथा आध्यात्मिक आश्रम पद्धति वंशानुगत जाति प्रथा बन चुकी है, किंतु यह वास्तविक पद्धति नहीं है। मानव समाज का अभिप्राय ऐसे समाज से होता है जो आत्मबोध की दिशा में अग्रसर हो। सर्वाधिक उन्नत समाज आर्यों का था। आर्य का अर्थ है जो उन्नतशील है, उन्नतिशील है। अतः प्रश्न है कि कौन सा समाज उन्नति पर अग्रसर है। उन्नति का अर्थ वृथा ही भौतिक आवश्यकताओं को उत्पन्न करना और तथा कथित भौतिक सुखों के सारे विश्व में वृद्धि करके मानव शक्ति को अपव्यय करना नहीं। वास्तविक उन्नति तो आत्मबोध की दिशा में प्रगति है, और जिसे समुदाय में इस उद्देश्य से कार्य हुआ वह आर्य सभ्यता कहलाई। इसमें बुद्धिमान पुरुष अर्थात ब्राह्मण आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहते थे। उदाहरणार्थ कर्दम मुनि सम्राट स्वयंभू जैसे क्षत्रिय देश का शासन चलाते और आत्मबोध के लिए सभी साधन सुचारू रूप से जुटाए जाते थे। राजा का धर्म है कि वह देश भर में घूम घूम कर देखे कि राज्य व्यवस्था ठीक है। वर्णों तथा आश्रमों पर आधारित भारतीय सभ्यता का ह्रास हो गया है, क्योंकि वे विदेशियों पर या जो वर्ण आश्रम की सभ्यता का पालन नहीं करते थे उन पर निर्भर रहने लगे। इस प्रकार वर्ण आश्रम पद्धति का अब जाति प्रथा में ह्रास हो चुका है। यहाँ पर चारों वर्ण आश्रमों की संस्था की पुष्टि भगवत रचित कहकर की गई है, जिसका अर्थ है श्री भगवान द्वारा बनाई गई। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है, चतुर्वर्णम मया सृष्टम। भगवान कहते हैं कि चारों वर्ण तथा चारों आश्रम मेरे द्वारा बनाए गए हैं। भगवान द्वारा सृष्ट कोई भी वस्तु ना तो छिपाई जा सकती है और ना समाप्त की जा सकती है। वर्णों तथा आश्रमों का विभाग चलता रहेगा, चाहे वे अपने मूल रूप में हो या बिगड़े रूप में, किंतु श्री भगवान द्वारा सृष्ट होने से उनको समाप्त नहीं किया जा सकता। वे भगवान की सृष्टि होने के कारण सूर्य की भांति बने रहेंगे, चाहे मेघों आच्छादित हो या निर्मल आकाश में हो, तो सूर्य तो बना ही रहेगा। इस प्रकार जब वर्णाश्रम पद्धति का ह्रास हो जाता है तो वे वंशानुगत जाति तथा प्रथा प्रतीत होने लगती है, किंतु प्रत्येक समाज में बुद्धिमान वीर व्यापारी तथा श्रमिक वर्ग होते हैं। जब वैदिक नियमों के अनुसार विभिन्न जातियों को सहयोग के लिए नियमित कर लिया जाता है तो शांति और आध्यात्मिक प्रगति होती है, किंतु जब जाति प्रथा में घृणा, अविश्वास, कुरीतियां घर घर जाती हैं तो पूरी पद्धति का ह्रास होने लगता है और अत्यंत शोचनीय अवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिसका यहाँ पर उल्लेख हुआ है। संप्रति सारा विश्व शोचनीय स्थिति को प्राप्त है, क्योंकि नाना प्रकार के स्वार्थ समाये हैं। वर्ण आश्रम के चारों वर्गों का ह्रास ऐसे ऐसा हुआ है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयमरूपं कदा मह्यं ददाति स्वप्नकान्ते। वन्देहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सर्वं ललिता श्रीविशाखान्विताः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे
हरे कृष्णा।
तो आज इस श्लोक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसमें अधिकतर चर्चा वर्ण आश्रम से जुड़ी हुई है। तो इस पर वर्ण आश्रम पर अधिक सभी लोग जानते हैं, फिर प्रयास करेंगे बोलने का, क्योंकि त्रुटि होगी तो क्षमा करें। तो इस श्लोक में कर्दम मुनि जो कि एक ब्राह्मण है और वो एक क्षत्रिय मनु महाराज स्वयंभू मनु को क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो देखने में बड़ा अचंभा लगता है कि एक ब्राह्मण कैसे एक क्षत्रिय को प्रणाम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे इन तीन श्लोकों के अंदर वर्णन किया गया कि जो स्वयंभू मनु थे वो किस प्रकार से आ रहे हैं, तो उसमें कहते हैं रत्न जड़ित रथ पर। तो इससे पता चलता है स्वयंभू मनु जो है वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। जिस प्रकार से हमारे गुरुदेव, हमारे गुरुजन, आचार्य भगवान के प्रतिनिधि हैं, वैष्णवाज, उसी प्रकार से स्वयंभू मनु क्योंकि भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं, मनुष्य की प्रजाति को शिक्षा देने के लिए मनु संहिता के द्वारा, और इसी के कारण उनको पालन करने के कारण मनु मनुष्य के जो मनु के जो वंशज हैं हम सब मनुष्य कहलाते हैं या मानव कहलाते हैं। तो उनकी स्थिति बताई गई किस प्रकार से वो एक क्षत्रिय राजा है, रत्न जड़ित रथ पर आरूढ़ होकर के आ रहे हैं। उनके पास धनुष, कोदंड, कोदंड मतलब जिसे दंडित किया जाता है, कोदंड धनुष लेकर के आ रहे हैं। तो स्वयंभू मनु के पास में एक रथ है जो कि रत्न जड़ित है, साथ में एक धनुष बाण है, और तेजवान सूर्य की भांति, मतलब जब वो चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कोई सूर्य प्रकाशवान हो रहा है, इस प्रकार से आ रहे हैं। विशाल सेना के साथ, विशाल सेना भी उनके साथ साथ में है और वो विचरण करते हैं, और जिनके पदाघात से, मतलब वो जो चलते हैं तो उससे क्या होता है, पूरी पृथ्वी हिलने लग जाती है। तो इतने पावरफुल क्षत्रिय राजा हैं और वो आ रहे हैं किसके पास में, कर्दम मुनि के पास में। तो कर्दम मुनि जो एक ब्राह्मण है जो कि तपस्वी है, वैरागी है, भक्त है, वो प्रणाम कर रहे हैं एक क्षत्रिय राजा को। जबकि हम देखते हैं प्राय लीलाओं के अंदर, शास्त्रों में, कि जो ब्राह्मण वर्ण है वो सबसे उत्तम है, वैष्णवा सबसे उत्तम है और सभी लोग उनके शरणागत होते हैं। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं क्योंकि राजा जो है ना उसको सम्मान देना चाहिए। राजा का मतलब हम अपने सिस्टम में देखें तो हमारे जो अथॉरिटीज हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, उनको हमको क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट, सम्मान देना चाहिए। लेकिन यहां पर जैसे वर्णन है कि राजा का कर्तव्य है वो दो चीजों पर ध्यान दे, आध्यात्मिक और सामाजिक, है ना। तो एक लीडर का कर्तव्य है, चाहे वो कंट्री लीडर हो या स्टेट लीडर हो या फिर कोई भी एक सोसाइटी का लीडर हो, इस्कॉन लीडर हो, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो दो चीजों का ध्यान रखें। जो उनके अनुगत लोग हैं वो सामाजिक तो प्रगति करें ही करें, मैनेजमेंट तो हो, लेकिन साथ में उनकी आध्यात्मिक प्रगति भर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन ज्यादातर इस तरह से स्थिति होती है जो कि उसको सुधार करना चाहिए, इसीलिए शास्त्रों की आवश्यकता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बार बार इस चीज को बोलते हैं, वर्णाश्रम धर्म लगाना चाहिए। उसका कारण यह है कि आध्यात्मिक प्रगति ना हो अगर अनुगत लोगों की, तो कोई फायदा नहीं हुआ उस लीडर का। जैसे बोलते हैं ना, मातृ न शिष्यात, पितृ न शिष्यात, गुरु न शिष्यात। जो माता है उनको अपने बच्चे उत्पन्न नहीं करने चाहिए, माता पिता को संतान उत्पत्ति नहीं करना चाहिए, गुरु को शिष्य नहीं बनाने चाहिए अगर वो अपने अनुगतों को कृष्ण भावना भवित नहीं बना सकते। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, गुरु का मतलब वही है जो भारी है, भारी मतलब जो अपने अनुगत लोगों को कृष्ण भावना से जोड़ सके। क्योंकि ऐसे बहुत सारे अन्य हमको लोग देखने के मिलते हैं टीवी पे, जो कि बोलते हैं कि ये हमारे गुरु जी हैं या फिर ये गुरु हैं, लेकिन वो गुरु अपने अनुगतों को कृष्ण भावना भवित में नहीं जोड़ सकते, तो वो इस प्रकार से उनको गुरु को शिष्य बनाने का योग्यता नहीं है। तो यहाँ पर वर्णन है कि जो राजा भी है, अगर वो प्रजा का राजा बनने के लिए तैयार हुआ है, उसको लीडर एक सेवा दी गई है, तो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उस पर जो डिपेंडेंट लोग हैं वो क्या बन जाए, भक्त बने, प्रगति करें। लेकिन अब प्रगति क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि है ना दो प्रकार के नेता होते हैं। ये जो नेता शब्द है ना, ये नेत्र से आया है। श्री राधा गोविंद भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री गौर नेताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो जो ये नेता सब नेता शब्द है ये आया है नेत्र से। जो नेत्रवान है वही नेता है, और जिसके नेत्रहीन है वो नेता बनने योग्य नहीं है। लेकिन आज हमारा समाज क्यों नीचे जा रहा है, लोग बोलते हैं अरे पता है आपको फरीदाबाद में इतने हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, बड़े खुश हो रहे थे, एडवांसमेंट हो रहा है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं इसके पीछे कि कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं। कोई भी हॉस्पिटल खाली मिलता है क्या, हर जगह भीड़ ही भीड़ है। तो वो ये नहीं सोचते कि हमारी दुर्गति हो रही है, वातावरण खराब हो रहा है ना, हम इतनी पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, यमुना का क्या हाल किया है, गंगा का क्या हाल किया है। तो इस प्रकार से हम कोई सेवा नहीं कर पा रहे, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं। लोग बोलते हैं कि क्या करते हैं आपके बेटे, कहा आईटी में है, बोलते ना क्या करते हैं, बोले आईटी में है। तो उनको बोलना चाहिए अच्छा इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से सभी लोग आज आईटी डिपार्टमेंट में है ना, सब लोगों को मोबाइल सॉफ्टवेयर लैपटॉप बड़ा पसंद है, आईटी। आईटी मतलब इंद्र तृप्ति। तो जो भी लोग अधिकतर उसमें है वो सब इंद्र तृप्ति में, विषय आसक्तियों में लिप्त है। तो दो प्रकार के जो नेता है ना, ये ऐसे होने चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते थे जो खुद ही नेता अगर नेत्रहीन होगा तो उसके पीछे चलने वाले हजारों हजारों, अगर नेता गड्ढे में जाएगा तो पीछे वाले भी गड्ढे में जाएंगे। लेकिन नेता अगर आंखों वाला होगा और पीछे अगर हजारों लाखों नेत्रहीन भी हो तो वो कहां पहुंच जाएंगे, सही रास्ते पे पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके लिए बहुत ही आवश्यकता है दो चीजों की। एक की जो नेता है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक नेता होते हैं जो प्रेम पूर्वक लोगों के ऊपर शासन करते हैं। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, प्रेम पूर्वक। और एक है जो कि बोलते हैं ना लीडर, जिसमें डर समाया हुआ होता है ना, उसके आने मात्र से लोग को थर थर कांपने लग जाते हैं, जिसे बोले ना पदाघात से पृथ्वी हिलने लग जाती थी, ओ आ गए, इस प्रकार के डर लगता है। रावण भी चलता था ना, कहते हैं दशानन के चलने से पूरी पृथ्वी कांपती थी, हिलने लग जाती थी, चिड़िया आदि पक्षी भी उड़ जाते थे, बोले कौन आ गया है, त्रिलोकी स्वामी रावण आ रहा है। तो इस प्रकार के भी लीडर हैं जिनको आने मात्र से लोग घबराते हैं, हिरण्यकश्यपु है ना, आने मात्र से लोग घबरा रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग जाओ कौन आ रहा है, राजा आ रहा है भाई, राजा के आने से घबराते क्यों है। तो इस प्रकार से सीखना चाहिए कि लीडर के आने से लोगों को घबराना चाहिए या फिर उनका प्रेम पूर्वक स्वागत करना चाहिए। घबराना चाहिए क्या, करना चाहिए स्वागत करना चाहिए, है ना। तो कई बार हम देखा गया है कि जैसे जब लोग अपने काम करते हैं ना, तो इसके एक लक्षण है जिसे पता कर सकते हैं कि ये नेता डर वाला नेता है या फिर ये नेता प्रेम वाला नेता है। पता कैसे, जैसे जो व्यक्ति डर करे, डरा डरा करके अपनी शासन दिखा करके लोगों को अपने अनुगत बनाता है, उसके लोग उसके सामने होने पर ही काम करते हैं, उसके सामने होने पर ही काम करते हैं। जैसे ही वो आएगा तो सारे के सारे लोग भाग भाग कर काम करेंगे, सफाई करो, ये करो, क्लीनिंग करो, मैनेजमेंट करो, सब कुछ करो। क्यों, बोले लीडर आ गया, डांट पड़ेगी, है ना। तो डर के कारण लोग सेवा करते हैं, काम करते हैं। लेकिन जब वो चले जाते हैं तो पीछे से क्या करते हैं, फालतू आदमी एकदम जीवन खराब कर दिया हमारा, अपने आप को क्या समझता है, ऐसे करके लोग क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन वही लीडर अगर प्रेम पूर्वक लोगों का आध्यात्मिक प्रगति का ध्यान रखता होगा तो उसके आने पर लोग क्या कहेंगे, पहले लोग तो काम पहले ही कर रहे हैं ना, उसके ना आने पर भी काम कर रहे हैं, उसके आने पर भी काम ही कर रहे हैं। और जब वो आएगा तो लोग कहेंगे कि आज हम काम नहीं करेंगे, आप तो अब हमें मिल गए, अब हम आपसे क्या करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे, आपसे सीखेंगे कि आप ऐसे इतने महान नेता कैसे बन गए। उनका स्वागत करेंगे, उनको बिठाएंगे, उनसे बातें करेंगे। लेकिन जो डराने वाला लीडर आएगा ना, तो लोग इधर उधर भाग जाएंगे, कहीं पूछ ना ले कुछ, जो पूछेगा, जो पकड़ा गया बस आज तो वो गया, उसकी गर्दन काटी जाएगी। तो इस प्रकार से लोग डर डर के, तो डर से लीडर होने की बजाय प्रेम पूर्वक लीडर होना चाहिए व्यक्ति को। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक कथा सुनाते थे, भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि आज के जमाने में लीडर को भी आवश्यकता है, वही उसी को प्रेम करता है जो चापलूसी करता है ना। तो बोलते हैं कि एक गांव का जमींदार था, वो कहता है कि ना रात को पूर्णिमा की चंद्रमा निकल रहा है, कहता है मैं सूरज देखना चाहता हूँ। तो गांव के जो लोग थे वो हैरान हो गए सुनकर के। अब डराता था जमींदार, होते थे ना फिल्मों भी दिखाते थे मूछ वाले जमींदार बैठे, तो ऐसे जमींदार नाम ही चलता है जमींदार, मतलब लगता है बस ये तो मारने पीटने वाला व्यक्ति है, डराने वाला व्यक्ति है ऐसा लगता है। तो वो जमींदार बोलता है कि मैं चाहता हूँ देखना क्या, पूर्णमासी की चंद्रमा को सूर्य देखना चाहता हूँ, दिखेगा सूर्य क्या। तो एक चापलूस कहता है हाँ हाँ मालिक ये लीजिए लालटेन, इससे दिख जाएगा लालटेन से। तो दूसरा जो चापलूस होता है वो कहता है अरे अरे नहीं नहीं, 1 करोड़ मोमबत्ती लगानी पड़ेगी, उसका जब प्रकाश होगा ना तो सूरज दिख जाएगा, दिखेगा। सूरज को दिया दिखाना बोलते हैं ना, वही वाली चीज है वो कर रहे लगे। लेकिन बाद में एक समझदार संवेदनशील व्यक्ति आया, वो क्या कहता है अरे आप कैसी बातें कह रहे हैं, कितना भी पूरे विश्व का जितना भी आप इलेक्ट्रिसिटी लगा लीजिए, जितने भी स्टेडियम लाइट्स लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन क्या नहीं कर सकते आप सूरज को देख नहीं सकते रात्रि में। सूरज कब दिखेगा, सूरज के आने पर ही दिखेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा आज का समाज में ना आध्यात्मिक ज्ञान के बिना लोग प्रकाश लाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे विश्व में प्रकाश लाना चाहते हैं कि नहीं, डेवलपमेंट, डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, इस तरह से लोग बोलते हैं, बस प्रगतिशील समाज, हमारा समाज एडवांस कर रहा है। लेकिन सही वाले में एडवांस नहीं है, क्योंकि गाइडेंस नहीं है, सही प्रॉपरली निर्देशन देने वाले लोग नहीं है, नेत्रहीन नेता है, इसके कारण ऐसा है। तो इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी कहते थे हर एक भक्त की जिम्मेदारी है, वो जहां भी जॉब करता है, जहां भी सेवा करता है, जहां भी रहता है, वहां पर उसको अपने अनुगत लोगों को इस प्रकार के मार्ग में चलाना चाहिए, जहां पर वो उनकी विशेष आध्यात्मिक प्रगति पर ध्यान दे। खाना पीना मैनेजमेंट इस पर तो सभी ध्यान देते हैं, इसके अलावा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो क्या ध्यान दे आध्यात्मिक प्रगति पर। तो इस तरह से चापलूस लोग होते हैं ना, वो लोग लीडर को पसंद होते हैं और लीडर उन्हीं को बोलता है कि बस यही है, और इसीलिए समाज सारा खराब हो रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार से भगवत गीता में भगवान ने कहा इस श्लोक में, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो लोग बोलते हैं चतुर्वर्णम बोला भगवान ने भगवत गीता में, लेकिन आश्रम तो बोला नहीं, चतुर्वर्णम आश्रम, तो आश्रम की चर्चा कैसे होती है। तो जहां भी वर्ण होगा तो वहां पर आश्रम भी होगा। तो ये नहीं कि भगवान के पास कोई अल्फाबेटिकली शॉर्टेज था, कुछ अक्षरों की कमी थी जिसके कारण भगवान बोले वर्ण आश्रम नहीं बोले, चतुर्वर्णम मया सृष्टम। तो भगवान तो खाली वर्ण बनाए हैं, आश्रम तो इंसानों ने बना लिए, सन्यास आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, तो ऐसा नहीं, वर्ण जहां है वहां आश्रम भी है। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए कि भगवान जो बोल रहे हैं चतुर्वर्ण आश्रम भी है उसके अंदर। तो उन्नत समाज जो है ना उसको आर्य कहते थे, जैसे इसमें बताते हैं प्रभुपाद लिख रहे हैं, आर्य का मतलब जो उन्नत थे, उन्नत मतलब कि जिनके जीवन का उद्देश्य था आत्मबोध करना, आत्म साक्षात्कार करना। लेकिन अभी जीवन का बोध क्या है लोगों का, समाज को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन मालूम नहीं है कि बढ़ेगा कैसे, क्योंकि आत्मबोध नहीं है। जैसे देखा जाता है अधिकतर लोग, इतने सारे लोग आजकल हम स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार देते हैं, इतने लोग आजकल एडवांसमेंट हैप्पीनेस सेमिनार देते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि हैप्पीनेस आएगी किससे, जो भगवान है ना गोविंद, सर्व कारण कारणम है कृष्ण, कृष्ण की भक्ति किए बिना, कृष्ण की सेवा किए बिना कोई भक्त खुशी रह सकता है। लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं खुश रहने का प्रयास कर रहे हैं, इतना बड़ा ट्रेड फेयर होता है उसमें क्या होता है कि लोगों को खुश किया जाए, इतने बड़े बड़े मेलों का उत्सवों का आयोजन हो रहा है, उसका कारण क्या है लोग खुश रह सके, लेकिन खुश है कहाँ, क्यों खुश नहीं है, क्योंकि उनके पास में कृष्ण नहीं है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम क्या करें, आत्मबोध का ज्ञान देने का प्रयास करें जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। एक बार हिज होलीनेस सचिनंदन स्वामी महाराज आए थे, तो उनके प्रवचन में उन्होंने वर्णाश्रम के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो उनसे बोला गया, भक्त ने प्रश्न पूछा कि महाराज आप ये बताइए कि अभी तो इस्कॉन में भी हम देखते हैं प्रॉपरली इस चीज का पालन नहीं हो पा रहा है, तो कैसे करेंगे इसको। तो उन्होंने उत्तर दिया कि जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना आप ही को इसको अप्लाई करना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए अरे उन्होंने अप्लाई नहीं किया, इन्होंने आत्मबोध का ज्ञान नहीं दिया, वो तो सिर्फ ऊपर ऊपर बातें करते हैं, अप्लाई नहीं करते जीवन में। उनका ठीक है, उनको छोड़ दीजिए, आप करिए। तो जहां पर भी हो सकता है आप किसी एक भक्त को प्रीच करते हो सकता है कि आप एक ऑफिस में आपके अंडर में सिर्फ एक व्यक्ति गार्ड हो, पीएन हो, कोई भी एक ड्राइवर हो, आपके सेवा करने वाला घर में आने वाला मेड सर्वेंट, कुछ भी हो, एक हो जो भी आपके अनुगत है, वहां से आप शिक्षा देना प्रारंभ करिए। किसकी? आत्मबोध की। जीवन किस लिए मिला है? आत्म साक्षात्कार के लिए। तो लेकिन लोग आजकल चाहते हैं बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भेजना, बड़े बड़े स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में भेजना, और इवन देखा गया डिवोटी सर्कल में भी लोग चाहते हैं नहीं नहीं डीपीएस आईआईटी ऐसे होना चाहिए। अगर किसी में अपने इंटेलिजेंट है वो जा रहा है तो उसके विपरीत भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रयास भी नहीं करना चाहिए। जैसे एक घर में हाउस प्रोग्राम के लिए गए थे, हाउस प्रोग्राम के लिए गए तो उनका बेटा फोर्थ क्लास में पढ़ता है, तो कह रहे थे प्रभु जी इसे ब्लेसिंग दीजिए। मैं क्या ब्लेसिंग दूंगा? प्रभुपाद जी देंगे। कहा नहीं नहीं इसे ब्लेसिंग दीजिए, इसका आईआईटी क्लियर हो जाए। कौन सी क्लास में था? फोर्थ। आईआईटी क्लियर हो जाए, आईआईटी अभी कहां से आ गया उसको, तो ट्वेल्थ के बाद में एग्जामिनेशन देगा। तो माता पिता अपनी जो एक्सपेक्टेशन, और वो भक्त हैं, अपनी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो अपने बच्चों के ऊपर डालना चाहते हैं। तो ये खुद ही जब भक्त अप्लाई नहीं करेगा अपने अनुगत के ऊपर, अपने पुत्र पुत्री संतान परिवार, तो कैसे वो व्यक्ति हमारा समाज परिवर्तित कर पाएगा? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारी एक भक्त की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे वो अपने पुत्र पुत्री को ही बदल दे, गृहस्थ आश्रम में हो, ब्रह्मचारी हो, अपने आसपास के मित्र आदि गणों को, किसी को तो वो प्रचार करे कि हमको आत्मबोध में रहना है, हमको इससे कोई मतलब नहीं कि बाहर क्या है, हमको इससे मतलब है कि अंदर क्या है। तो जैसे आज देखते हैं ना समाज में, प्रोक्षिल भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे जड़ेर विद्या मायार वैभव, इतनी भी पढ़ाई लिखाई हो रही है वो कैसी है? माया का एक्सपेंशन है, माया का विस्तार है, है ना? जैसे हमारी कंट्री काफी देश, काफी वर्षों तक पूरा विश्व यही ढूंढता रहा कि हमारी पृथ्वी जो है ना वो गोल है कि चपटी है, ढूंढ रहा था कि नहीं गोल है कि चपटी है, स्फेरिकल है या फिर सर्कल है, है ना? तो यही ढूंढता रहा पूरा विश्व, साइंटिस्ट लगे रहे, बड़े बड़े दिमाग लगाते रहे, बाद में वो ढूंढ पाए जब अपोलो यान पहुंचा ना, अपोलो के साथ में स्पेस पे पहुंचे, तब वहां से देखा, तब पता चला वो पृथ्वी तो स्फेरिकल फॉर्म में है, हम तो इसको सर्कल मानते थे, गोलाकार मानते थे, लेकिन ये अंडाकार है। ये बात कब पता चली? जब ऊपर का इतना पैसा खर्च किया। तो हमारे ऋषिगण बोलते थे जो जियोग्राफी जो नाम आया ना, जियोग्राफी मतलब क्षेत्र की ज्ञान, क्षेत्र भगवद गीता में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, लेकिन जियोग्राफी में क्षेत्र का ज्ञान है ना, क्षेत्रफल क्षेत्र। तो वो अगर जियोग्राफी को हिंदी में देखें तो क्या बोलते हैं? हाँ जी, भूगोल। और हमारे बहुत समय से वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था गुरुकुलों में, और उसमें बताया था भूगोल, भूमि कैसी है? गोल। लेकिन वो जा रहे हैं इतना पैसा खर्च करके और स्पेस यान से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि पृथ्वी गोल है। बोले पहले ही पता है भूगोल, भू चपटी नहीं है नाम उसका, वरना ज्योग्राफी का नाम होता भू चपटे उसका नाम है भूगोल, क्योंकि ऊपर जाकर के ज्यादा दिख रहे हैं, इसलिए पैसा खर्च कर रहे हैं। कहते हैं हमारे जो ऋषिगण थे, हमारे साइंटिस्ट सारे ऋषि थे, है ना, हमारे समाज में जितने भी लोग थे, अब वो वर्ण आश्रम में आते थे, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे वर्ण आश्रम कॉलेज होना चाहिए। प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है मॉर्निंग वॉक, वर्ण आश्रम कॉलेज, वो कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज की तरह उसकी ब्रांडिंग होनी चाहिए, इसको उनके भक्तों को खोलना चाहिए वर्ण आश्रम कॉलेज। और ऐसा नहीं वर्ण आश्रम में खाली ब्राह्मण ही बनाने हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, गुण कर्म विभागशा, गुण और कर्मों के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं। जैसे जाति के आधार पर लोग विभाजित करते हैं, आप कौन है? बोले जी मेरा नाम है पान सिंह बहादुर, बहादुर अच्छा आप तो बड़े बहादुर होंगे, आवाज आती है कुत्ते की तो ताला डाल के अंदर बैठ जाते हैं, है ना, ऐसे बहादुर कैसे नाम से नहीं है। और बोलते हैं कि एक बच्चे को बोल रहे थे जल्दी जल्दी नहा लो बेटा वरना पानी चला जाएगा, बोले बच्चे का नाम क्या है? बोले बच्चे का नाम है गंगा, है ना। तो इस प्रकार के नाम के समरूप नहीं है, जैसे कई लोगों का नाम होता है ये गिरधारी लाल, होता है ना गिरधारी लाल, मिल जाएंगे आपको दुकान पर इधर उधर मार्केट, गिरधारी लाल 5 किलो का पत्थर नहीं उठा सकते, नाम है गिरधारी लाल, गिर को धारण करने वाले। तो नाम के समरूप जाति जातियों में भी सिंह लगाते हैं नाम के पीछे, लेकिन ना वो कभी सिंह से मिले ना वो सिंह के सामने आ सकते हैं। टीवी पे भी आ जाता है, जोर से बोलता है तो टीवी ऑफ कर देते, चैनल चेंज कर देते, ऐसे क्षत्रिय है। तो ऐसे क्षत्रियों के साथ में हम बोल रहे वर्ण आश्रम जाति, आप कौन है? जी मैं शर्मा हूँ। अच्छा अच्छा, तो माला जप किए? माला जप किया करिए। नहीं नहीं, मुझे बड़ी शर्म आती है जप करने में, ना मेरा नाम ही है शर्मा, मैं शर्माता हूँ। तो इस तरह के वर्ण आश्रम नहीं है ये, जाति पाति में हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, गुण और कर्मों के आधार पर। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमको ये जो मटेरियल एजुकेशन है उससे बहुत प्रभावित नहीं होना है। कोई पढ़ रहा है तो पढ़ करके उसको सिर्फ इतना करना है कि वो ज्ञान ले ले, लेकिन उसका मेन ज्ञान है आत्मबोध करना, आत्म साक्षात्कार करना। हमारे इस पृथ्वी में जो ये स्थान है भारत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझना कि जो हमारे इस एरिया के लोग थे, इस पृथ्वी के इस पार्ट के जो लोग थे, इतने ज्ञानी थे, उन्होंने आज से कितने वर्ष पहले रस्ट फ्री आयरन बना दिया था, जंग ना लगने वाला लोहा बनाया था। आज भी जाएंगे ना आप कुतुब मीनार के सामने तो वहां पर एक खंभा लगा है, कैसा है वहां पर कभी जंग नहीं लगती है और हजारों हजारों साल से लगा है। एक चार मीनार के आगे हैदराबाद में लगा हुआ है, कभी उसमें जंग नहीं लगती है और आज भी विश्व के लोग उसे खोज नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसा आयरन है एलॉयड, कभी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट ही नहीं मिल रहा है उनको, ऐसा कोई ढूंढ ले कि ऐसे कैसे बन गया। लेकिन ऋषि मुनि पहले ही बता गए, ऐसे उठाया बनाया मंत्रों के द्वारा और बन गया बस। तो आप सोचिए कितनी शक्ति थी। और विश्व के लोग ढूंढते रहे ढूंढते ढूंढते रहे, लोग बोलते नहीं पाश्चात्य देश बहुत अच्छा है, हिंदुस्तान अभी पीछे है, हम लोगों को अभी उनको कॉपी करना चाहिए, हर चीज इंपोर्टेड हम लोगों को अच्छी लगती है, हमें अपना वर्ण आश्रम अपना शास्त्र अपना ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, तो इंपोर्टेड चीजें पसंद है। पेरिस का परफ्यूम लोग मंगाना चाहते हैं, क्योंकि पेरिस में परफ्यूम क्यों आया? क्योंकि वहां के लोग नहाते नहीं है 10 दिन तक, तो उनके शरीर से इतनी दुर्गंध आती है कि उनको परफ्यूम को बनाना पड़ गया और वो लगा करके खुशबू में रहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में तो लोग प्राय सभी लोग 3 बार 2 बार नहाते थे, गंगा स्नान यमुना स्नान जो भी नदी पास में कुआ आदि में सब में स्नान करते थे। लेकिन अभी कैसे लोग हैं? नहीं वो तो नहाते नहीं है 2 दिन तक 3 दिन तक, कॉर्पोरेट लाइफ है ना, सर्दी बहुत पड़ रही है और भक्त की भी स्थिति खराब हो चुकी है। एक हमारे यहाँ आचार्य है नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर, वो क्या कहते हैं, उनको जब 22 बाजारों में मारा जाता है तो कहते हैं कि मैं अपना नाम जप नहीं छोड़ सकता हूं, खंड खंड जाए देही जाए यदि प्राण, अब मेरे खंड कर दीजिए शरीर को, मेरे प्राण को निकाल दीजिए, फिर भी मैं क्या नहीं छोड़ूंगा, हरिनाम लेना नहीं छोड़ूंगा। और हमारे यहाँ क्या होता है, हम कॉर्पोरेट लाइफ एडवांस लाइफ इस जीवन के इस इंपोर्टेड लाइफ के इतने आदि हो चुके हैं कि थोड़ी सी सर्दी बढ़ती है ना तो हमारा हरिनाम छूट जाता है। हम लोग क्या कहते हैं, ठंड ठंड आए दे ही जाए हरिनाम, वो कहते थे खंड खंड जाए दे ही, हम कहते थे ठंड ठंड आए दे, सर्दी लगती है नाम जब छूट जाता है मॉर्निंग प्रोग्राम खराब हो जाता है। तो बहुत जरूरी है कि हम आत्म साक्षात्कार को समझें, शरीर के ऊपर ना रहे। तो प्रभुपाद जी हमारे इतने ऊपर कृपा करने के लिए आए, प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर हमको ये प्रोग्राम दिया है, इसको हमें पढ़ना चाहिए, इसको हमें समझना चाहिए, शास्त्र अध्ययन डेली करना चाहिए और भक्तों से सीखना चाहिए कि कैसे आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। सब लोग कहते हैं श्रवण करो श्रवण करो, श्रवण करने से शुद्धि होती है ना, शुद्ध चित्त का उदय हो जाता है श्रवण करने मात्र से। लेकिन सच्चाई ये है कि श्रवण करने मात्र से आपको ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन जब तक आप उसे अपनाएंगे नहीं आपका जीवन परिवर्तित नहीं होगा। आपने रोज श्रवण किया भागवतम कक्षा में आकर 8 से 9 पॉइंट्स भी बना लिए और फिर अगले दिन फिर नए पॉइंट्स बना लिए, फिर अगले दिन नए पॉइंट्स बना लिए, फिर लिखते रहे और फिर एक दिन आया 2018, फिर वो वाली डायरी बंद कर दी, नई डायरी खोल ली, वो वाली चली गई रैक के अंदर, दूसरे 2018 में नई निकाली, फिर पॉइंट्स बनाए, फिर 2018 वाली बंद कर दी, नए नोट्स, 2019 फिर पॉइंट्स बनाए। लेकिन कभी उसमें पॉइंट्स को ना पढ़ा दोबारा से ना कभी अपनाया तो क्या जीवन परिवर्तित होगा? सुनने के लिए बहुत सुंदर लगेगा, आवश्यकता है, श्रवण करने से कृष्ण कथा सुनने से आनंद होगा क्योंकि कृष्ण आनंद भंडार है, तो उनकी कथा उनके भक्तों के लीलाओं को सुनने से आनंद तो आएगा, लेकिन जीवन परिवर्तन कैसे होगा? हाँ प्रभुपाद बोलते हैं इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, इतनी जगह से हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं बट देयर इज नो हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, हृदय नहीं बदल रहा है। भक्त बनने के बाद भी 20 साल 15 साल जप करते हुए हो गए, लेकिन लोग यही प्रश्न पूछ रहे होते हैं, महाराज जी 20 साल हो गए हैं हमारा मन नहीं लगता है जप में, क्यों? क्योंकि कभी लगाने का प्रयास ही नहीं किया, कभी ध्यान पूर्वक हमने शास्त्र पढ़ने का प्रयास ही नहीं किया। जो करते हैं आप उनको देख सकते हैं कि वो भक्त प्रगतिशील है, वो आगे बढ़ते रहते हैं बढ़ते रहते हैं, और सभी लोग बोलते हैं अरे वो तो बड़े आगे बढ़ रहे हैं, तो जो नहीं बढ़ रहा होता वो व्यक्ति उनको क्रिटिसाइज जरूर कर सकता है और इससे उसका और पतन हो जाता है, सोच रहा नहीं होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। तो इसलिए बहुत जरूरी है हियरिंग, श्रवण, श्रवण करने के बाद में, श्रवणम के बाद में, अध्ययनम के बाद में मननम, अपना सोचना चाहिए, कंटेम्पलेट करना चाहिए, मननम, जो मैंने सीखा आज, जो मैंने सुना आज, इस भगवत कक्षा में मैं बैठा तो मैं क्या लेकर के अपने साथ में अपने कमरे में जा रहा हूं, मैं अपने घर जा रहा हूं, अपनी सेवा में जा रहा हूं। एक पॉइंट, किताब में हजार पॉइंट लिखे होंगे लेकिन मन में कोई एक पॉइंट भी अगर लिया ना रोज रोज में, और उस अपनाने के बाद में उसको अपनाया हमने, तो फिर आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार होगा। एक क्रिया है श्रवणम मननम निदिध्यासम, आत्म साक्षात्कार। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से प्रक्रिया नहीं पालन करता, बैठता है कानों का मेला है ना, श्रवण कर्ण उत्सव, कर्ण रस प्राप्त करता है, बिना पॉइंट के चला जाता है, कभी अपनाता नहीं जीवन में, तो बोलते ना बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, बहुत जन्म तक भी श्रवण कीर्तन किया फिर भी भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होता। उसका कारण यही है कि हम अपनाते नहीं जीवन में। तो प्रभुपाद जी बहुत ही बार बार इस चीज को बोल रहे हैं कि हमको अपने जीवन में अपनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज हम अपना नहीं पा रहे हैं क्योंकि घृणा, अविश्वास और कुरीतियां, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये सभी ने क्या कर लिया है, हमारे इस समाज को पूरी तरह से घेर लिया है। और इसके घेरने से कारण क्या हो गया है, अधर्म अभिभावतः कृष्णा प्रदिश्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दृष्टा सुवर्णशे जायते वर्ण शंकर, वर्ण शंकर उत्पन्न हो जाएंगे। अर्जुन को पहले से ही ये इस बात का डर था कि अगर मेरा कुल नष्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, वर्ण शंकर उत्पन्न होंगे। लेकिन अभी कैसे विवाह होते हैं जहां पर ब्राह्मण गुणों से ब्राह्मण व्यक्ति एक क्षत्रिय से विवाह कर लेता है, सबसे बेस्ट है वैष्णव समाज, वैष्णव वैष्णवों में विवाह होते हैं, या नहीं होते हैं तो वैष्णव बन जाते हैं। लेकिन प्रयास ये करना चाहिए अगर वैष्णव विधि से नहीं हो रहा है तो अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों के समाज में, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय समाज में। और अर्जुन इस बात के लिए बार बार बोल रहे हैं वर्ण शंकर जायते वर्ण शंकर, वर्ण शंकर उत्पन्न हो जाएंगे अगर स्त्रियां क्या हो गई दृष्टासु, अगर वो थोड़ी सी भी और दुष्टासु दूषित हो जाती है तो पूरा समाज बिगड़ जाता है। और आज समाज कैसा है, कंधे से कंधा मिलाकर चलो, और वो बिगड़ रहा है इसी के कारण क्योंकि उनको कोई प्रॉपर गाइड करने वाले नहीं है। और लोग जो विवाहित है ना वो भी उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी आदि संतानों को इस बात की शिक्षा दे, जैसे कर्दम मुनि अपने घर में शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन वो शिक्षा नहीं देते हैं, लोग तो घबराते हैं। कई लोग प्रश्न पूछते हैं प्रभु जी हमारे घर पे ना बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे प्रभु जी जो है ना वो मंदिर में तो विनम्र बन के रहते हैं लेकिन जब घर जाते हैं ना तो पूरा शेर बन जाते हैं, घर जाकर के इतना चिल्लाते हैं, हर छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते हैं, मंदिर में तो बहुत ही आनंद से रहते हैं लेकिन घर जाकर शेर बन जाते हैं। तो मैंने प्रभु जी से बोला कि प्रभु जी आप ऐसा क्यों करते हैं, बोला प्रभु जी मैं तो शेर बनता हूं, मेरी पत्नी तो शेरा वाली बन जाती है, मेरे ऊपर आरूण हो जाती है पूरी तरह से। अभी बताओ घर में भक्त मंदिर में आ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, पांच पांच साल हो गए लेक्चर सुन रहे हैं, संडे लव फीस का प्रसाद पाते पाते मतलब इतने मटके बन जाए अगर उसने इतना प्रसाद पेट में डाला होगा, लेकिन प्रसाद पाने के बाद भी बोलते हैं रामानुजाचार्य जी जा रहे थे और उनके पीछे उनके शिष्य जा रहे थे, उनका एक मात्र प्रसाद लेकर महाप्रसाद उन्होंने उसमें फेंक दिया कुंड में, और वहां पर एक मछली ने खाया और वो कहां चले गई चतुर्भुज रूप लेकर भगवत धाम। सभी शिष्यों ने पूछा कि कैसे हम रोज महाप्रसाद खा रहे हैं लेकिन कोई परिवर्तन नहीं है, तो उन्होंने कहा क्योंकि आपकी पदार्थ बुद्धि है, आपकी प्रसाद बुद्धि नहीं है। अगर आप प्रसाद को प्रभु के साक्षात दर्शन के रूप में कि मेरे प्रभु ने खाया है, गोविंद ने खाया, कृष्ण ने खाया, ऐसा भाव नहीं है और मैं उनका क्या एक उच्चिष्ट खा रहा हूं ऐसा भाव नहीं है तो कभी परिवर्तन नहीं आएगा। कितना सारा इतना सारा पर्वत बना के प्रसाद भी खा लो ना फिर भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, पेट खराब हो सकता है लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हम पदार्थ देखते हैं। कई बार होता है ना जब प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो लोग ध्यान देते हैं कि आप ना मुझको ये दे दीजिए, तो वो अपनी मर्जी से डाल देंगे ना, अगर करेला तो बोलेंगे नहीं नहीं ये नहीं चाहिए प्रसाद मुझे, वो वाला हलवा प्रसाद दे दो, क्यों करेले में प्रसाद नहीं है, हलवे में ही प्रसाद है, बताइए। इस प्रकार से ये पदार्थ बुद्धि के कारण ही परिवर्तन ना होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम घर में जो श्रवण करें जाएं, अपना है अपने घर को वर्ण आश्रम, जो प्रकार की आपकी गुण है, जो आपके कर्म है, उसके अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। और प्रभुपाद बोलते हैं वर्ण आश्रम कॉलेज मॉर्निंग वॉक में हृदयानंद स्वामी और सत्यस्वरूप दास गोस्वामी महाराज दोनों प्रभुपाद से प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या चाहते हैं आप प्रभुपाद वर्णाश्रम में, क्या वर्णाश्रम वैष्णविज्म से नीचे है या ऊपर है, क्या वैष्णव को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में फंसना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि फंसना नहीं है, अगर वैष्णव बनना है तो ये सीढ़ी है, इसमें जब वर्ण आश्रम में आप आते हो उसमें आप अपनी भजन करते हो तो धीरे धीरे आप वैष्णव बन जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वर्णाश्रम को त्याग के आप कभी वैष्णव बन सकते हो। इसीलिए ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ये आश्रम नाम दिए गए, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, आश्रम की आवश्यकता है। वरना देखा जाए तो भगवान तो तीनों आश्रमों से ऊपर है, चारों आश्रमों से ऊपर है, और भगवान के भक्त वैष्णव भी चारों आश्रमों से ऊपर है, फिर क्यों बोला जाता है ये ब्रह्मचारी आश्रम में है, ये गृहस्थ आश्रम में, बोलना चाहिए तो बस वैष्णव है, कोई आश्रम में नहीं। तो ये आश्रम की आवश्यकता है, हमको वर्ण की आवश्यकता है। तो बोलते हैं कि जैसे भगवान है ना, उनके मस्तक से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हो रही है, उनके हाथों से अब भगवान क्षत्रियों की उत्पत्ति हो रही है, उनके नाभि से, स्टमक से, उदर से वैश्यों की उत्पत्ति हो रही है, और जांघों से, पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हो रही है। तो शूद्र जो है ना, ये कैसे होते हैं, पूरे तमोगुण में होते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर तमोगुण में हो तो उसे समझ लेना चाहिए, मेरे अधिक प्रयास होने पर भी मैं जो हूं ना कभी ब्राह्मण नहीं बन पा रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि शूद्र है तो वो वैष्णव नहीं बन सकता, वो सेवा करके वैष्णव बन सकता है, क्योंकि उसकी वृत्ति ऐसी है, सेवा वृत्ति, उसको अच्छा लगता है क्लीनिंग करना, और उसको लेकिन शास्त्र पढ़ता है तो उसको नींद आ जाती है, उसको वॉमिटिंग होने लगती है, जप करने में अट जाता है, ध्यान पूर्वक 16 माला से अधिक तो कहता है चक्कर आ रहे हैं, मेरा तो ये दाढ़ अटक गई है, कोई लोग बोलते हैं मुंह में ना, ऐसे ही बता रहे थे, बोले ज्यादा जप करने से प्रभु जी यहां दर्द होने लगा है। मैंने कहा कि ऐसा बोले, मैंने कहा ठीक है थोड़ा सॉफ्ट बोल लिया करो 16 माला के बाद में, मन में थोड़ा कर ले, नहीं नहीं प्रभु जी मन करता है कि मैं ज्यादा माला करूं, लेकिन 18 भी हो जाए तो मुंह में दर्द होने लग जाता है ऐसे। तो मैंने कहा आपको क्या अच्छा लगता है, कहा मुझे बड़ा मन करता है झाड़ू उठा के ना पूरा मंदिर साफ कर दूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप वही किया करो, आप 16 माला के बाद वही किया करो, वही आपके लिए भगवान का भजन है ना, वृत्ति है, वृत्ति का गुण है, उसके कर्म है, उसकी गुण उसमें जैसा वो रहता है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं सबको ब्राह्मण बनना जरूरी नहीं है कि जिसको क्लीनिंग अच्छा लगता है, जिसको कुकिंग अच्छा लगता है, वो व्यक्ति बैठ जाए नहीं मैं भी भागवतम सीखूंगा, मैं भी जो है ना वो क्या करूंगा संदेश दूंगा। अब जिसका गुण नहीं है, जिसका कर्म नहीं है, वो बैठेगा बोलने के लिए, समझने के लिए, तो वो समझ नहीं पाएगा, उसको उससे सिर्फ श्रवण करके अपनी सेवा में उसको अपनाने से वो विस्तार कर सकता है। एक कुक है, अगर वो वर्ण आश्रम धर्म से शास्त्र का ज्ञान लेकर अपनी कुकिंग को इसलिए अच्छा बनाता है कि मुझे कृष्ण प्रसाद बनाए, कृष्ण का भोग बनाना है, अगर वो अच्छा भक्त बन, भक्त प्रसाद पाएंगे ऐसा विचार करके वो सेवा करता है, तो उसका भजन है वो बहुत बड़ा, बहुत अधिक भजन है वो उसका। तो ऐसे कई भक्त है वृंदावन में 40 साल से कुकिंग कर रहे हैं, इतने अमेजिंग डिवोटीज है। तो हम सीख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति प्रचार कर रहा है, जो व्यक्ति भागवत कक्षा दे रहा है वही बेस्ट है, ये वर्ण आश्रम है, कोई व्यक्ति किसी चीज में श्रेष्ठ है, कोई व्यक्ति किसी चीज में श्रेष्ठ है, तो जो जिसमें है वो उसी से भक्त बन सकता है। भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा तुम क्षत्रिय हो चलो छोड़ो सब कुछ, बैठकर क्या करेंगे श्रीमद भागवतम पर चर्चा करेंगे या भगवत गीता पर चर्चा करेंगे, कुछ प्रश्न पूछो, ये कहां फंस गए हो तुम लड़ाई झगड़े में छोड़ो। तो प्रभुपाद जी बोल रहे नहीं, अर्जुन को बोला तुम क्षत्रिय हो तुम युद्ध करो, तो उनका गुण था, कर्म था कि उन्होंने उनको धनुष बाण अपना लेकर के उनको चलाना बाण अच्छा लगता था, और इस प्रकार से एक्सपर्ट थे कि जब द्रोणाचार्य ने बोला कि तुमको क्या दिखाई देता है, तो उन्होंने क्या बोला था, मुझको पेड़ नहीं दिखता, मुझको पेड़ की डाली नहीं दिखती, मुझे पेड़ में बैठी चिड़िया की आंख दिखती है। तो इससे क्या पता चलता है ये ब्राह्मण है, ये व्यक्ति क्षत्रिय है, अचूक दृष्टि है इसकी, तो इस व्यक्ति को सेवा में लगाना है क्षत्रिय की। तो प्रभुपाद जी से पूछते हृदयानंद स्वामी कि प्रभुपाद आप चाहते हैं ब्राह्मण बनाना तो हम सिर्फ ब्राह्मण बनाएं, प्रभुपाद ने कहा नहीं हम मिलिट्री ट्रेनिंग भी देंगे, मंदिर में रक्षा करने के लिए लोगों की आवश्यकता है। तो बोले अगर जरूरत पड़े तो फिर हम क्या लड़ाई भी कर सकते हैं, बोले हाँ लीगल लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, इलॉजिकल नहीं, जैसे रोड पर लड़ाइयां होती हैं है ना, थोड़ा सा स्क्रैच लग गया तो एक दूसरे की शीशे फोड़ रहे, गाड़ियां लड़ रहे हैं लोग, वो भी नहीं। लेकिन इस प्रकार से कि हम भगवान की सेवा में, जैसे श्री हनुमान जी ने क्या किया, भगवान की सेवा के लिए लंका में आग लगाया, अपने क्रोध को भगवान की सेवा में लगाया, तो मिलिट्री ट्रेनिंग भी देंगे, वैश्य समाज भी बनाएंगे, वो उनको सिखाएंगे कैसे आपको ग्रेन्स उगाने चाहिए, कैसे गाय की रक्षा करनी है, काउ प्रोटेक्शन, गाय रक्षा सिखाएंगे उनको, गाय पालन सिखाएंगे उनको। आजकल समाज कैसा है, लोग भैंस पाल लेते हैं लेकिन गाय नहीं पालते हैं, कुत्ता पाल लेते हैं लेकिन गाय नहीं पालते हैं, और बोलते क्या है पता है, भैंस का दूध पीते हैं और बोलते हैं हमारे घर में ना गोपाल की सेवा चलती है। तो मैंने उनको बोला कि आपके भगवान का नाम भैंस पाल है या गोपाल है, तो बोलते हैं गोपाल। मैंने कहा तो फिर गाय पाल लिए हैं और भैंस का दूध क्यों पीते हैं आप, तो बोले मिलता नहीं आजकल। मैंने कहा तो प्रयास करिए, जैसे भी अरेंज करिए, कैसे भी कोशिश, इसीलिए वर्ण आश्रम की आवश्यकता है, शेल्टर में आना ही है सब भक्तों की, और उनसे सीखना है कैसे अपना है। शूद्रों को प्रभुपाद जी ने बोला, अगर कोई व्यक्ति शूद्र है तो क्या प्रभुपाद उसे भी ब्राह्मण बनाने का प्रयास करना है? प्रभुपाद ने कहा तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा उसको ब्राह्मण बनाने में, उसको जो उसकी वृत्ति है वही ट्रेनिंग दो कि प्रॉपर क्लीनिंग, प्रॉपर जो सेवा है, सभी तीनों लोगों, तीनों वर्ण की वो सेवा कर सके, है ना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बार बार बोल रहे हैं कि हमें वर्ण आश्रम की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रभुपाद ने यह भी कहा बलेर घामा दुलबरेर घामा घूमा, ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद जी, बोलते हैं बलेर घामा मतलब जिनमें बल है ना उनसे पता चल जाएगा, जैसी कोई सेवा आएगी ना जिसके अंदर बल होगा ना, क्षत्रिय क्वालिटी होगी, दौड़ करके कोई भी सामान उठाने के लिए तैयार हो जाएगा सेवा में, और उसके शरीर से निकलने वाले पसीने से आप जान जाएंगे ये बलशाली है। बलेर घामा और दुर्बलेर घूमा, जो दुर्बल व्यक्ति होगा ना वो अधिकतर सोने में उसका मन लगेगा, जैसे मंदिर में इतने गार्ड्स रहते हैं, मंगल आरती में बेचारे उठ भी जाते हैं, जब भी कर लेते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वो गुण है उनका, जिस गुण में वो आए हैं, जिनमें उनकी उत्पत्ति हुई है, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अधिक प्रयास करना है कि जिसमें वृत्ति है ब्राह्मण बनने की उसको जल्दी ब्राह्मण बनाए, जिसमें क्षत्रिय की उसको जल्दी क्षत्रिय बनाए। तो प्रभुपाद जी ऐसा वर्ण आश्रम कॉलेज खोलना चाहते थे, और प्रभुपाद ने कहा जैसे इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दी जा सकती है किसी को, ऐसे ही ब्राह्मण बनने की ट्रेनिंग भी दी जा सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी ब्राह्मण बनेंगे, सभी मैकेनिकल इंजीनियर बनेंगे नहीं, जरूरी जिसको जो अच्छा लगेगा वो उस स्ट्रीम में जाएगा, उस स्ट्रीम के अंदर, उस एक लाइन के अंदर उसको ज्ञान प्रदान किया जाएगा, उसको ट्रेन किया जाएगा सही तरीके से, ताकि वो भगवान की सेवा उत्तम तरीके से करे, क्योंकि सभी का कर्तव्य एट लास्ट क्या है, अंतिम आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार। तो यहां पर यही श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमको वर्ण आश्रम धर्म को प्रॉपरली चलाना है। जैसे भगवान का उदाहरण भी आता है, भगवान कृष्ण कौन से वर्ण में आते हैं बता सकते हैं, कौन से वर्ण में है भगवान? देखा जाए तो भगवान त्रिगुणातीत है, किसी भी गुण में नहीं अटकते हैं, भगवान किसी आश्रम या किसी वर्ण में बंधे हुए नहीं है, लेकिन जब आते हैं तो जब अपनी लीला करते हैं तो कौन से वर्ण में आते हैं? वैश्य वर्ण में। भगवान राम कौन से वर्ण में आते हैं? क्षत्रिय। चैतन्य महाप्रभु हम ब्राह्मण पंडित। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अलग अलग वर्ण आश्रम भगवान ने भी लेकर के सिखाया कि जिसकी जैसी वृत्ति है उसको वैसी ट्रेनिंग देना चाहिए, और उस ट्रेनिंग में दोनों चीजें होनी चाहिए, उसकी सामाजिक उत्पत्ति भी हो और उसकी आध्यात्मिक प्रगति भी हो, है ना, अध्यात्म ना छूट जाए। ये नहीं कोई शूद्र है तो उसको नीची दृष्टि से देख करके अच्छा तुम तो क्लीनिंग करते हो, अच्छा तुम तो कुकिंग करते हो, नहीं, वो भी भक्त है भगवान का, वैष्णव बन सकता है, लेकिन वो उस वर्ण उस आश्रम के अनुसार है। ऐसे ही ग्रस्त है तो उसको ये नहीं सोचना ये तो ग्रस्त है, या फिर ये ब्रह्मचारी है, या फिर ये तो सन्यासी को ही मैं पूजा करूंगा, ये सभी आश्रम में है। प्रभुपाद जी से कोई पूछे कि प्रभुपाद कौन सा आश्रम श्रेष्ठ है, प्रभुपाद ने कहा मैं आश्रमों का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं कृष्ण भावना का प्रचार कर रहा हूं, जिस भी आश्रम में आपका भजन, आपकी चैंटिंग, आपका ध्यान पूर्वक जप, भगवान की सेवा, गुरु सेवा हो सके वो आश्रम सबसे बेस्ट है। तो ये आपको देखना पड़ेगा मैं किस आश्रम के लिए बना हूं, मैं किस वर्ण के लिए बना हूं, आपकी वृत्ति कैसी है, तो आपको कैसे पता चलेगा, आपके गुरुजनों के द्वारा, वैष्णवों से आप पूछ सकते हैं मेरी वृत्ति कैसी है, और उसी अनुसार अपनी सेवाओं को करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण, श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, पंचतत्व गौर निताय की जय, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, निताय निताय गौर हरि प्रेमानंद श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय, हरे कृष्ण। क्वेश्चन पर्सनली
के बहुत ही अमेजिंग क्लास स्टूडेंट का और बहुत ही रियलाइज क्लास. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एसोसिएशन. हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 राम.